ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र समेत आठ दलों की बैठक ने राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा सूचना प्रौद्योगिकी की नई उपलब्धियों को संस्कृत विश्वविद्यालय को अपनाना चाहिए। संवैधानिक परिषद के काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की मंत्रिपरिषद ने दी स्वीकृति। पांचथर के हिलिंग में एक घर में आग लगने से दो बच्चों की झुलसकर हुई मौत। और यूक्रेन संकट समाधान के लिए शांति वार्ता शुरू करने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीन ने किया आग्रह। नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र सहित आठ दलों की बैठक ने राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करने का निर्णय किया है। आज शाम प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहित जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा के शीर्ष नेताओं की बैठक ने राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला लिया। ये जानकारी नेकपा एस के नेता प्रकाश ज्वाला ने दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पूर्व आज सुबह कांग्रेस माओवादी केंद्र दसपा और नेकपा एस के शीर्ष नेताओं की हुई बैठक ने चुनाव से पहले बनाए गठबंधन को पुनः जोड़ने की सहमति हुई थी। फागुन 25 को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल शनिवार को उम्मीदवारी पंजीकरण की कार्यतालिका है। नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसर में स्थापित निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक उम्मीदवारी पंजीकरण किए जा सकने की बात सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता कुमारी शर्मा ने बताई। कल ही शाम 4 बजे के अंदर उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उसी परिसर में स्थापित मतदान केन्द्र में फागुन 25 कते को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान का कार्यक्रम है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान संपन्न होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम 7 बजे के भीतर ही मत परिणाम साझा कर दिया जाएगा। सरकार ने संवैधानिक परिषद के काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2079 को संघीय संसद में पेश करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया। कल गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने ये बात बताई। इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद ने विभिन्न निर्णय किए हैं जिनमें आर्थिक वर्ष 2078-79 के सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृत कर राष्ट्रपति समक्ष पेश करने, चालू आर्थिक वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 3,351 रूपये तय करने और अत्यावश्यक सेवा प्रवाह होने वाले सरकारी कार्यालय सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में भी संचालित करने लगाए निर्णय शामिल हैं। प्रतिनिधि सभा की बैठक सांसदों की गढ़पूरक संख्या पूरी न हो पाने के कारण फागुन 15 गते तक के लिए स्थगित हो गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा द्वारा पेश की गई राष्ट्रीय सभा से संदेश सहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक 2078 पर विचार करने का प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश करने के लिए सांसदों की गढ़पूरक संख्या न हो पाने के बाद सभामुख देवराज घिमरे ने बैठक स्थगित होने की घोषणा की थी। बता दें कि किसी भी विषय को निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के लिए सभा के 1/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होने की संवैधानिक व्यवस्था है। आज की प्रतिनिधि सभा बैठक में महज 50 सांसद उपस्थित थे जबकि विधेयक की निर्णयार्थ प्रस्तुति के लिए 69 सांसदों की उपस्थिति होनी चाहिए थी। इससे पूर्व विधेयक के ऊपर सैद्धांतिक विचार विमर्श के क्रम में विभिन्न समसामयिक मुद्दों को सांसदों ने उठाया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को विश्व में विकसित हो चुकी सूचना प्रविधि की नई उपलब्धियों को अपनाना चाहिए। आज नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभा की 75वीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को नवीन शैली और सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को समय सापेक्ष बनाने के विषय को सरकार ने अपने नीति कार्यक्रम में समेटा है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि देश को इल्म वाली जनशक्ति की जरूरत है। आज भक्तपुर में प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद CTEVT के 35वें वार्षिक उत्सव का उद्घाटन करते हुए संचार मंत्री शर्मा ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी प्राथमिकता में है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री अमन लाल मोदी ने कहा कि क्रॉसर व्यवसायियों को सरकार की ओर से कानून सम्मत सहयोग मिलेगा। आज काठमांडू में नेपाल क्रॉसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ की 8वीं और 9वीं संयुक्त वार्षिक साधारण सभा में मंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि कानून बनाने के संदर्भ में वे सहजीकरण करेंगे। पास्थर की हिलिहांग गांवपालिका वार्ड नंबर 7 भारपा में आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि आज दोपहर स्थानीय प्रेम पंथाक के घर में आग लग गई। इस हादसे में स्थानीय शरण पंथाक के 5 वर्षीय बेटे शिसेहांग पंथाक और अपने मामा घर आए हुए फिदिम नगरपालिका वार्ड नंबर 5 चुक मागू के संतोष खाती के 4 वर्षीय बेटे निशान खाती की उस आग की चपेट में मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जब आग लगी तब घर में बस वे दोनों बच्चे ही मौजूद थे। आग लगी में घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। पुलिस ने बताया कि क्षति का पूर्ण विवरण आना बाकी है और घटना का अनुसंधान हो रहा है। मेलमची का पानी वितरण के क्रम में पाइप में चुहावट के कारण काठमांडू घाटी की बहुत सी सड़कों में क्षति पहुंची है। खासतौर पर घाटी में पानी वितरण हो रहे मुख्य शहरी क्षेत्र की सड़कों में ही पानी चुहावट के कारण अधिक क्षति पहुंची है। ये बात डिवीजन सड़क कार्यालय काठमांडू ने बताई। चितवन में जंगली हाथी के आक्रमण में एक इसराइली नागरिक की मौत हो गई। हाथी के हमले से 30 वर्षीय इसराइली नागरिक सैमुएल बोइकनर की हुई मौत की जानकारी चितवन जिला प्रहरी कार्यालय ने दी। पुलिस के मुताबिक रत्ननगर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 हाथीसार के पास आज दोपहर को नदी के किनारे हाथी ने उन पर हमला किया था। इसे मिलाकर चालू आर्थिक वर्ष में देश में जंगली जानवरों के हमलों में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। इसमें बाघ के हमले में 1, हाथी के हमले में 2 और गैंडे के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की पहली वर्षगांठ पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि युद्ध को अब रोकना चाहिए, संघर्ष और युद्ध से किसी का फायदा नहीं हुआ है। युद्ध विराम कर धीरे धीरे स्थिति को आसान और सामान्य बनाना चाहिए। चीन ने कहा कि सभी पक्षों को मिलकर साथ रहना चाहिए और संयम बरतना चाहिए, आग की लपटों को हवा देने से बचे ताकि बढ़ते तनाव और संकट को और बिगड़ने से रोका जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और न ही परमाणु युद्ध होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम किसी के द्वारा बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों के विकास का विरोध करते हैं। यूरोपीय संघ के राजदूत जॉर्ज टुलेडो ने आज बीजिंग में एक ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि चीन का पोजीशन पेपर शांति प्रस्ताव नहीं था, लेकिन ईयू इसका अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि यदि पोजीशन पेपर यूक्रेन के लिए एक सकारात्मक संकेत है तो यह यूरोपीय संघ के लिए भी एक सकारात्मक संकेत होगा। चीन ने अपने पोजीशन पेपर में कहा कि एक तरफा प्रतिबंध और अधिकतम दबाव इस मुद्दे को हल नहीं कर सकते, इससे केवल नई समस्याएं पैदा होंगी। चीन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनधिकृत एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है। वहीं यूक्रेन ने पोजीशन पेपर को एक अच्छा संकेत बताया और कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि चीन यूक्रेन के समर्थन में अधिक सक्रिय होगा। यूक्रेन के प्रभारी डी अफेयर्स झन्ना लेशचिंस्का ने कहा कि हमें आशा है कि चीन भी रूस से युद्ध रोकने का आग्रह करेगा और अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र समेत 8 दलों की बैठक ने राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा सूचना प्रौद्योगिकी की नई उपलब्धियों को संस्कृत विश्वविद्यालय को अपनाना चाहिए। संवैधानिक परिषद के काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की मंत्रिपरिषद ने दी स्वीकृति। 5 स्तर के हिलिंग में एक घर में आग लगने से 2 बच्चों की झुलसकर हुई मौत और यूक्रेन संकट समाधान के लिए शांति वार्ता शुरू करने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीन ने किया आग्रह। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।